शाम का धुंधलका घिर रहा है। पूरे दिन की भाग दौड़, आपाधापी, दफ्तर, रसोई के बाद आपने गरम चाय का एक कप बनाया है और बुकशेल्फ से निकाली है आर कॉमन बॉन्ड बुकलेट। सिटीजनशिप टेस्ट यानी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता परीक्षा की तैयारी फिर एक बार शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, श्रोताओं, मैं हूँ वृषाली जैन SBS हिंदी से और आपके लिए ला रही हूँ इस नागरिकता परीक्षा को आसान बनाने का एक छोटा सा प्रयास। SBS ऑडियो की लर्न इंग्लिश श्रृंखला से निकली ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप पॉडकास्ट सीरीज में हम चर्चा करेंगे क्या कुछ है ऐसा जिस पर ध्यान देने से आपके लिए हो सकती है ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता परीक्षा आसान। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि इस परीक्षा में आपके सामने क्या क्या पेश आ सकता है, जैसे कि ये परीक्षा केवल अंग्रेजी में होती है, इसमें 20 सवाल होंगे, आपको इसे पार करने के लिए कम से कम 75% अंक लाने होंगे और परीक्षा के दिन आपके पास आपकी एक फोटो आईडी आवश्यक है। इसकी सारी तैयारी आर कॉमन बॉन्ड बुकलेट नाम की एक किताब से की जाती है जो कि सरकारी वेबसाइट पर 40 भाषाओं में उपलब्ध भी है। इस भाग में हम अपनी टीचर जी यानी मीना जी से इस बुकलेट के तीसरे भाग की चर्चा करेंगे, तो आइए चलें अपनी क्लास में। भाई दो भागों की डिस्कशन, दो भागों की चर्चा हम कर चुके हैं जहां हमारी टीचर जी मीना जुनेजा ने हमें ये बताया था कि किस तरह से भाग एक और भाग दो की तैयारी करनी है, क्या होता है उन भागों में, और आज हम चर्चा करेंगे आर कॉमन बॉन्ड टेस्ट बुकलेट की भाग तीन की, यानी ऑस्ट्रेलिया में कानून और सरकार यानी गवर्नमेंट एंड द लॉ इन ऑस्ट्रेलिया की। तो मीना जी, गवर्नमेंट एंड द लॉ इन ऑस्ट्रेलिया यानी ऑस्ट्रेलिया में सरकार और कानून जो भाग है उसमें किस बारे में चर्चा कर रहे हैं हम?
ये भाग बहुत ही लंबा है और स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है इसमें काफी चीजों को याद करने के लिए, याद करने में। सो इसमें मेनली सरकार कैसे बनती है, सरकार की शक्तियाँ क्या हैं और राज्य की सरकारें क्या करती हैं, स्थानीय सरकारें क्या करती हैं और संघ की सरकार क्या करती है, कानून कैसे बनाए जाते हैं और यहाँ की मेनली यहाँ की शासन पद्धति क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो मैं मानती हूँ कि इसमें बहुत कुछ याद करने को है, पर हमारे स्टूडेंट्स जो इंडिया से आए हैं उनको ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है क्योंकि ये वाला भाग जो है और यहाँ की जो सरकार है वो काफी हमारी इंडिया की सरकार से मिलती जुलती
है। जी, तो किस तरह से ये सरकार मिलती जुलती है और किस तरह से इसको याद रखें, क्योंकि भाई लंबे लंबे परीक्षा के पर्चे याद रखने तो बड़े मुश्किल है।
बिल्कुल, तो यहाँ तीन तरह की सरकारें हैं, तो ये याद रखना है कि जैसे काउंसिल है, लोकल काउंसिल है, वो क्या क्या काम करती है, आप देखते हैं आपके आसपास पार्क हैं, स्कूल्स हैं, वो सब कौन उसको मैनेज करता है, तो आप अगर उन चीजों की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इनके काम समझने में और इनकी शक्तियां समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो इस चैप्टर में बहुत डिटेल में समझाया गया है तीनों सरकारों की शक्तियों के बारे में और इसमें ये भी बताया गया है कि नेता कौन कौन से होते हैं, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर जनरल है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, तो इन सब के बारे में बताया गया है।
तो मीना जी, एक उदाहरण लेते हैं, एक नमूना लेते हैं कि किस तरह से हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं, किसके बारे में पूछे जा सकते हैं।
एक सवाल जैसे मेरे स्टूडेंट्स आके बताते हैं जब वो पास हो जाते हैं कि गवर्नर जनरल की भूमिका के बारे में सवाल अक्सर आता है। ऐसा नहीं सोचे कि हमेशा ही आता है, क्योंकि ये सवाल जो है ये कंप्यूटर पिक करता है, जो मेनली 100 क्वेश्चन है उनके पास, उसमें से कंप्यूटर 20 क्वेश्चन लेता है हर परीक्षा के लिए, कोई बैच के डिसाइड नहीं कर रहा है, पर मोस्टली मेरे स्टूडेंट जब पास होके आते हैं तो वो बताते हैं कि गवर्नर जनरल की भूमिका के बारे में जरूर था एक क्वेश्चन। तो जैसे मैं फिर से जो बुक में सवाल दिया गया है उसके ऊपर जाऊंगी कि यस, तो इसमें है विच ऑफ दीज इज अ रोल ऑफ द गवर्नर जनरल, द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट प्रीमियर्स, B is signing all bills passed by the Australian Parliament into law. C is the appointment of the head of state. तो वैशाली बताओ फिर कौन सा ठीक है इसमें से, A, B और C?
क्या इसका जवाब C है?
नहीं
uh-huh.
इसका जवाब B है, साइनिंग ऑल बिल्स पास्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट इनटू लॉ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे भारत देश में राष्ट्रपति सारे बिल पर साइन करते हैं, तो गवर्नर जनरल की भूमिका भी उसी तरह की है कि वो जो भी बिल पास होता है पार्लियामेंट में उसको साइन करते हैं। पर थोड़ा सा उनकी नियुक्ति के बारे में ये डिफरेंट है अगर आप कंपेयर करें इंडिया से, तो इनकी नियुक्ति जो है वो अब रिसेंटली किंग आ गए हैं तो किंग करता है, पहले क्वीन किया करती थी अब किंग करेगा। तो ये किसी भी दल में से नहीं है, जो राजनीतिक दल है उनमें से नहीं है।
जी, तो एक काम करते हैं, कुछ और सवालों और उदाहरणों के साथ अपने श्रोताओं को छोड़ करके जाते हैं और फिर लौट कर आकर बात करेंगे कि इस भाग की सबसे मुश्किल बात क्या है। जैसे पिछले भाग में एंजेलिन पेनरिथ और लूक कैरल ने हमें सवालों का सही उच्चारण भी सिखाया था और कई उदाहरण भी दिए थे, वैसे ही इस भाग में भी वे उदाहरण और उच्चारण दोनों लेकर के आ रहे हैं। आइए सुनते हैं और सीखते हैं।
For example, one question could be, is voting in Australian elections compulsory?
Of course, the answer is yes. Voting in elections is done by secret ballot. In this method, each person makes their choice privately or secretly so that no one else knows how they voted.
So this way, voting is free and safe. What does it take to change the Australian Constitution through a referendum?
For a referendum to be successful, we must have a double majority. This is when at least 4 out of the 6 states and more than 50% of citizens give a yes vote.
How many arms of government does Australia have? And we're not talking about arms as in hands.
No. Arms of government are branches or types of government. These are different levels of power that control the government.
Under the Australian Constitution, there are 3 arms of government.
There is the legislative power, which makes laws.
Executive power, which carries out laws.
And the judicial power, which applies laws. A penalty is a punishment that people are given for breaking the law.
Is it illegal to bribe a police officer?
A bribe is money or something else of value that is offered to someone because you want them to do something, usually something illegal. So yes, it is illegal to try to bribe a police officer because they are trying to make sure we all obey the law, and so they should be fair.
Is it against the law to use a handheld mobile phone while driving?
Yes, it is. You should also know that traffic laws are controlled by state and territory governments.
Remember, there are 3 levels of government.
Australian government, state and territory governments, and local governments.
These are all responsible for different services. I'm sure you'll have questions about it in your test.
But you'll do fine. It's all explained in part 3 of our common booklet.
It's available in 40 languages.
जी, ये तो हमने सुने थे कुछ उदाहरण। अब बात करते हैं कि इस भाग के सबसे मुश्किल हिस्से क्या हैं?
क्योंकि ये भाग बहुत लंबा है तो इसमें बहुत सारी चीजों को याद करना पड़ता है, यही सबसे मुश्किल काम है। तो आपको लिस्ट बना लेनी चाहिए और डायग्राम भी बना सकते हैं जिसमें हम दिखाते हैं कि सरकार कैसे बनी, उसका डायग्राम बन सकता है। लिस्ट बना सकते हैं कि कानून कैसे पास होता है, किस किस स्टेज से गुजरता है। तो आपको थोड़े से नोट्स बनाने होंगे, परीक्षा में जाने से पहले उन नोट्स को एक बार देख लें तो कोई मुश्किल नहीं आएगी।
जी, और कैसे याद करें इतनी सारी चीजों को?
सबसे अच्छा याद करने का तरीका तो यही है कि उसको कोरिलेट करें किसी चीज के साथ, और आप अपने आसपास के उस व्यवहार को देखें, जैसे लोग मतदान देने जाते हैं, सरकारें क्या क्या काम करती हैं, कौन स्कूलों को देखता है, कौन रोड्स को देखता है, कौन, आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे और उससे आपको याद करने में इजी रहेगा।
जी, तो एक काम करते हैं मीना जी, कुछ और क्विज के साथ छोड़ देते हैं आज श्रोताओं को, और फिर हम और आप इनके लिए लेकर के आएंगे आखिरी भाग यानी ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज। एंजेलिन और लूक ने हमारे लिए एक क्विज भी तैयार करी है, जहां पर हम कुछ प्रश्नों के साथ साथ जवाब देते हुए चल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या है हमारी तैयारी का स्तर। अगर आप जवाब ना भी दे पाएं तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि तैयारी का समय आपके हाथ में है, लेकिन सवालों के जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आइए सुने लूक और एंजेलिन हमारे लिए क्या सवाल लेकर के आए हैं।
Let's practice.
And please don't worry if you don't get all the answers right. We haven't talked about everything in the booklet, and you can look up any answers you don't know in the booklet if you have to. Remember, this is only a practice after all. Okay, Angeline, let's go.
Which of these is the role of the Governor General? A, the appointment of the state premiers? B, signing all bills passed by the Australian Parliament into law? C, the appointment of the head of state? The correct answer is B. The role of the Governor General includes signing all bills passed by the Australian Parliament into law.
Next question. Which arm of government has the power to make laws? A, legislative power? B, executive power? Or C, judicial power? The answer is A. Legislative power is the power to make and change laws.
Who is responsible for building permits and social planning? A, the Australian government. B, state and territory government. C, local governments. The correct answer is C. Local governments are responsible for building permits and social planning.
Next question is, what do we call a proposal to make a law in Parliament? Is it A, a vote? B, bill? C, ballot? The correct answer is B. The proposal to make a law or change an existing one is called a bill. So, how did you go?
ये तो हमने चर्चा करी थी भाग तीन की। अगला भाग यानी आखिरी और चौथा भाग जो है वो है ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज यानी ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों पर। चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में मीना जी के साथ कि क्यों है वो भाग सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा डराने वाला और सबसे ज्यादा आसान भी। जुड़े रहिए कहां SBS लर्न इंग्लिश और SBS हिंदी की इस सिटीजनशिप पॉडकास्ट सीरीज के साथ। और तब तक आपको क्या करना है भाई, करते रहिए अपनी तैयारी और हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प एपिसोड।